मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैंने जिस विषय के लिए आपका सुझाव मांगा था आपने मेरे उस विषय को हाथों हाथ लिया और आप सब ने अपनी सहमति दी। आप सब ने कहने का मेरा मतलब है कि जिन्होंने भी मेल लिखे उन सब की मुझे सहमति प्राप्त हुई। और सहमति जब मिलती है या जब असहमति प्राप्त होती है ना, तो आपकी भाषा लिखने के तौर तरीके से पता लग जाता है कि ये केवल सहमति के लिए सहमति है या यह केवल असहमति के लिए ही असहमति है या सच में यह एक ईमानदार सहमति या असहमति है। एकदम साफ समझ में आ जाता है कि ये जो आलोचक है, ये जो आलोचना कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो प्रशंसा कर रहा है इसमें भी कितनी सच्चाई है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मेल लिखे तो उसमें मुझे साफ साफ तौर पर एक बहुत ही गहरी सच्चाई दिखाई दे रही थी। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब अब प्रारंभिक परीक्षा सप्ताह मनाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा सप्ताह, राइट? तो आइए इसकी शुरुआत कर देते हैं क्योंकि आज कोई दूसरी ऐसी खबर नहीं है। लेकिन एक बात कि जब मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ तथ्य बहुत स्पष्ट कर देने चाहिए। जब मैं कह रहा हूं प्रारंभिक परीक्षा सप्ताह, तो इसका मतलब है कि इस सप्ताह हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बातें करेंगे, राइट? अगर दूसरी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई तो उसकी केवल मैं आपको सूचना भर दूंगा। अब ये जब मैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की बात कर रहा हूं तो ये तैयारी किस तरीके की, इसे जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए मेरे दिमाग में मेरा जो टारगेट ग्रुप है वो बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि मैं जिनके लिए बात कर रहा हूं वो बहुत साफ है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं है। मेरी ये जो बातें हैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो एक प्रकार से अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू ही कर रहे हैं और वो नेक्स्ट ईयर बैठेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरी बातें उनके लिए बिल्कुल ही बेकार हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरा जो टारगेट ग्रुप है वह ग्रुप है, दो बिंदु ध्यान से सुनिए। पहला तो यह कि जो इस बार के प्री एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, जिसके लिए अभी ढाई महीने शेष हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जिसकी अब तक की तैयारी इस स्तर की हो चुकी है, मतलब वो ये मान करके चल रहा है कि अगर अभी एग्जाम हो जाए तो वो मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर कर लेगा, 40%। अब 40% से ऊपर वह जितने भी मार्क्स स्कोर कर सकता हो, लेकिन मिनिमम 40% की उसकी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि मैं जो तथ्य बताने जा रहा हूं वो उसी के आगे की ही बात होगी। मैं आपसे पूरी विस्तार के साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, कौन कौन से विषय, इन सब पे बात नहीं करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि उसके लिए अब उपयुक्त समय भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो 40% से ऊपर की तैयारी तो कर चुके हैं लेकिन उन्हें ये बात कठिन लग रही है कि किस तरीके से मिनिमम 50% के डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा ही जाए, क्योंकि देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आपको प्री एग्जामिनेशन में 50 से ऊपर स्कोर करना ही होगा। बेहतर है कि हम उसे 50 से 55 के बीच में ले जाएं, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम 40% के आसपास है और उसके ऊपर फिर 42, 45, 46 कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि 48 भी हो सकता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मेरी तैयारी 48% तक की तो है ही, तो मुझे 3-4% के लिए ही तो और काम करना है, तैयारी करनी है, तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आपके दिमाग से यह विचार कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए कि हमारी अपनी प्रिपरेशन जब हो जाती है तो एक लेवल के बाद यदि हम थोड़ा सा भी उसमें इजाफा करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमारी जितनी भी एबिलिटी थी उस एबिलिटी का हम इस्तेमाल कर चुके हैं और उस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बाद हमें लग रहा है कि आई कैन स्कोर 45% मार्क्स। तो अब हालांकि दिखाई तो यह दे रहा है कि जब मैं 45 स्कोर कर सकता हूं तो मुझे केवल 5 ही तो और स्कोर करना है, तो जो 45 स्कोर कर सकता है उसको 5 स्कोर करने में क्या दिक्कत है? दोस्तों बहुत दिक्कत है। यहां तक आप समझ सकते हैं कि 45 तक स्कोर करने में आपको जितनी मेहनत नहीं लगी है, शायद उससे ज्यादा मेहनत हो सकता है कि इस 5% को स्कोर करने में लग जाए, क्योंकि 45 तक की मेहनत में आपने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया है, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो अब संकट यह होता है कि ये जो 7% का फासला है या 5% का फासला है, इसे पूरा कैसे किया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। डेली ऑडियो लेक्चर में कभी कभी आपने मुझसे सुना होगा कि मैं ये बात कहता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कहता हूं तो उससे पूरा सिलेबस आपके सामने होता है ना, आपके पास एक लंबा वक्त होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कहता हूं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। और सच पूछे तो मैं यहां जो प्रारंभिक परीक्षा वीक करने जा रहा हूं उसका संबंध सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी से है, यानी कि 40, 42, 45% के आसपास आपका स्कोर हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको 52 चाहिए। अब आप जो 7% का फासला है इसे कैसे पूरा करेंगे? याद रखिए कि अगर आप अपने पुराने ही पैटर्न को दोहराते रहेंगे, यानी कि आप अपने पढ़ाई करने के घंटों को बढ़ा देंगे, जो सिलेबस छूट गया है, सामान्यतः देखिए स्टूडेंट इसी तरह से डिसीजन लेते हैं कि अरे ये मेरा ये हिस्सा छूट गया है तो मैं इस हिस्से को भी पढ़ लेता हूं, तो हो सकता है कि वहां से एक दो क्वेश्चन आएंगे तो वहां से कुछ बन जाए, अच्छा मैं इसे कर लेता हूं। और इस तरीके से उन्हें लगता है कि ठीक है अब वो बकायदे 52% तक पहुंच जाएंगे। गलत नहीं है, कुछ सीमा तक तो आप यूं कह लीजिए कि यह भी बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि जो आपका छूटा हुआ हिस्सा है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बंजर जमीन जोत रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वहां गुलाब के फूल खिलेंगे, यानी कि आप ऐसे टॉपिक पर मेहनत कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, और चलिए एकाध क्वेश्चन पूछ भी लिया गया तो क्या आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में उसकी प्राप्ति जो होगी वो सही है? क्योंकि अब आपके पास देखिए समय कम है, अब आज से अगर हम जोड़ लें तो लगभग 2.5 महीने का वक्त आपके पास है। 2.5 महीने का वक्त कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अब आपके पास समय कम है। तो जब समय कम होगा तो आपकी तैयारी का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्या पिछला स्वरूप ही अब कंटिन्यू करेगा या कि उसमें बदलाव आना चाहिए? उसमें बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, और इस बदलाव को ही मैं कहता हूं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। यहां अब आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, याद रखिए, ज्यादा घंटों की जरूरत नहीं है। घंटों की आपकी आदत हो गई है, डेली 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। आप ये मत समझिए कि चूंकि अब 2.5 महीने ही बचा है तो अब आपको अपने घंटे बढ़ा देने, बशर्ते कि आप इतने एवरेज पर चल रहे हो। हाँ, अगर आपके घंटे अभी 2-3 थे तो डेफिनेटली अब उसे थोड़ा सा बढ़ाए जाने की तो जरूरत है, क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं फोकस्ड तो अपने आप को करना ही पड़ेगा, अपने आप को बहुत ही टारगेट तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा। तो अब ये फोकस्ड होगा कैसे? अब आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, जिसे आजकल बहुत ज्यादा कहा जाने लगा है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। यानी कि जैसे जब सेनाएं, दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, या जो दो क्रिकेट टीम एक दूसरे को हराने के लिए खेल रही होती हैं, तो आप देखिए कि ऐसा नहीं कि खिलाड़ी गए और ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, नो, वो बकायदे एक स्ट्रेटजी तैयार करती हैं, एक रणनीति तैयार करती हैं, और उस रणनीति को फिर अप्लाई करती हैं, यानी कि उसके अनुसार काम करती हैं। तो दोस्तों, चूंकि आप लोगों की अपनी तैयारी के स्तर अलग अलग होंगे, इसलिए मेरा पहला विनम्र सुझाव यह है कि आप सबको अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर लेनी चाहिए। उन रणनीतियों के बिंदु क्या होंगे वो धीरे धीरे आपके सामने बातचीत के दौरान इमर्ज होते चले जाएंगे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या इस आपकी रणनीति होनी चाहिए। जो रणनीति का जो पहला बिंदु है दोस्तों, वो ये है कि आप अभी एक काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें, और साथ ही साथ पूरे इत्मीनान के साथ करें। प्लीज डू इट, आप ऐसा करें यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो। कि एक बार आप, ज्यादा वर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कम से कम पिछले 2 साल के प्री के जो जनरल स्टडीज फर्स्ट के पेपर्स हैं उन्हें पढ़ जाएं, और दोनों पेपर एक ही साथ मत पढ़िए। अगर आप आज समय दे सकते हो तो एक क्वेश्चन पेपर आज पढ़ें, बेहतर होगा कि लेटेस्ट को आज पढ़ें, और जो उससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे आप कल पढ़ें। दोनों को एक साथ मत पढ़िएगा, गड्डम गड्ड चीजें हो जाएंगी। और जब मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ें तो आपको शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार से नहीं पढ़ना है, आपको बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वह टॉपिक आपके दिमाग में इमर्ज हो जाए, मतलब। और ऐसा तभी होगा जब आप इत्मीनान के साथ उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने दिमाग की रचना उसके अनुकूल करनी है। अभी आप अपने दिमाग को पेंट कर रहे हैं, जैसे एक दीवार में आप पेंट करते हैं ना चित्र बनाने से पहले, तो उस तरीके से आपको अपने दिमाग को पेंट करना है। आप पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें। अगर आपका पूरा दिन लग जाता है तो हड़बड़ाइए मत, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं टाइम, सही मायने में यूज कर रहे हैं। आप पाएंगे कि जब आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा तो आपके दिमाग में टॉपिक के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस और जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसका एक सुंदर चित्र तैयार हो गया है, सुंदर चित्र तैयार हो गया है। अच्छा, इस तरीके से जटिल प्रश्न बनाए जाते हैं, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इन इन सेक्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरे यहां से तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। आपका दिमाग सोचने लगेगा, लेकिन ये तभी ऐसा करेगा, यानी कि आपका दिमाग तभी ऐसा कर सकेगा जब आप इत्मीनान के साथ उसके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप हड़बड़ी में रहेंगे तो आपके दिमाग को इसे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेगा, वो भी हड़बड़ी में रहेगा। तो दोस्तों, आप ऐसा करें। चूंकि आज अब समय हो गया है तो अब मैं कल इसके दूसरे इश्यू पर बात करूंगा, लेकिन खत्म करने से पहले एक अनुरोध आप सबसे, और मैं चाहता हूं कि हम अपने इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा व्यावहारिक बनाएं, बहुत ही प्रैक्टिकल बनाएं। तो मैं चाहूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर के आपके मन में जो प्रश्न हो, जो समस्याएं हों, आप ईमेल के जरिए मुझे सूचित करें। और याद रखें कि आज आपका जो मेल है वो 6 बजे से पहले पहले यदि पहुंच जाएगा तभी आपके प्रश्न शामिल हो सकेंगे, इसके बाद आपके प्रश्न शामिल नहीं होंगे। सोचेंगे कि ठीक है आप कल बता देंगे, परसों बता देंगे, तो कल भी प्रश्न आएंगे, परसों भी प्रश्न आएंगे, तो आपके प्रश्न पीछे रह सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि जैसे ही आप इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे इस विषय पर जानना है, तो आप तुरंत मेल लिख दें। बड़ा मेल लिखने के चक्कर में मत पड़ें, छोटा सा ही अपना प्रश्न लिख करके भेज दें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं के समाधान करने में सक्षम हो सकूं। तब फिर आप पाएंगे कि 4-5 दिन के बाद सच में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो रास्ता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो मार्ग है, आपको कितना स्पष्ट दिखाई देने लगा है, कम से कम मुझे ये पक्का विश्वास है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, केबी मीना, सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से, गीत शर्मा और प्रणव राज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।